स्वागत है आपका दिनभर में। आज है 19 सितंबर दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी में सैन्य ठिकाने पर हुए चरमपंथी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक, राष्ट्रपति से भी की मुलाकात।
आज चीजें हुई है, रोष है, हमको भावनाओं में नहीं बहना है। और दूसरा पहलू है कि हर चीज को सोच विचार के ठंडे दिमाग से एक रणनीति के तहत काम करना है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र के कई इलाकों में लाखों लोग सड़कों पर उतर कर कर रहे हैं प्रदर्शन, क्या है कारण?
जितने किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में हुई है, अगर उनकी आप जाति देखेंगे तो उसमें 90% मराठा दिखते हैं।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अमर शर्मा से। भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी सेक्टर में चरमपंथी हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके आवास पर हालात की जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत सेना और अर्धसैन्य बलों के सुरक्षा प्रमुख अधिकारी शामिल थे। रविवार को भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी सेक्टर में चरमपंथियों ने भारतीय सेना के कैंप पर हमला कर दिया था, जिसमें 18 सैनिकों की मौत हो गई। सेना की जवाबी कार्रवाई में 4 चरमपंथियों की भी मौत हो गई थी। बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रह्मदाग बुक्ती ने आज जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे भारत में राजनीतिक शरण लेने के बारे में सोच रहे हैं और जल्द ही इसके लिए जिनेवा स्थित भारतीय दूतावास के जरिए भारत सरकार के समक्ष आवेदन दायर करेंगे। बुक्ती पाकिस्तान के खिलाफ बलूच आंदोलन में अग्रिम मोर्चे पर रहे हैं और फिलहाल स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। बुक्ती ने बताया कि बलोच रिपब्लिकन पार्टी ने फैसला किया है कि पाकिस्तानी सेना के जर्नलों और चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस दाखिल किया जाएगा। पार्टी इसके लिए भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से संपर्क करेगी। ब्रह्मदाग बुक्ती बलूच नेता नवाब अकबर खान बुक्ती के पोते हैं, जो 2006 में क्वेटा के नज़दीक कोहलू में पाकिस्तानी सेना के हमले में मारे गए थे। ब्रह्मदाग बुक्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
मैं फॉर्मली अब इंडियन गवर्नमेंट से अपनी असाइलम का दरख्वास्त करूंगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो कि पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स हैं और एक्स जनरल्स हैं और जो मौजूदा हैं और आईएसआई के हैं या जो मुलविस हैं बलूचिस्तान में कुश्तखून में, उनके खिलाफ हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में करेंगे। वहां पर इंडिविजुअल कर सकते हैं। जो दूसरी बात मैंने कही, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां पर हम चाइना को ले जाएंगे।
ये थे ब्रह्मदाग बुक्ती। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में बलूचिस्तान की स्थिति पर मुद्दा उठाने पर बुक्ती ने उन्हें धन्यवाद दिया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने सीरियाई सेना पर अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमलों की निंदा की है और इसे खुला आक्रमण बताया है। शनिवार को सीरिया के डेर अल-ज़ार शहर में सीरियाई सैनिकों पर हमला हुआ था। रूस के मुताबिक इस हमले में 60 से ज्यादा सीरियाई सैनिक मारे गए थे। पेंटागन का कहना है कि यह हमला गलती से हुआ, दरअसल उनके निशाने पर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के लड़ाके थे। ब्रिटेन ने आज इसकी पुष्टि की कि इन हवाई हमलों में वो भी शामिल था। अमेरिका की न्यू जर्सी में अधिकारियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन के पास कूड़ेदान से बरामद हुए एक संदिग्ध वस्तु में धमाका हो गया। एलिजाबेथ शहर के मेयर क्रिस बॉलवेज ने कहा कि जब बम निरोधक दस्ते का रोबोट इसकी तलाशी ले रहा था तो संदिग्ध उपकरण में धमाका हो गया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी सेक्टर में सैन्य ठिकाने पर रविवार को हुए चरमपंथी हमले में मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। हमले में बुरी तरह जख्मी सिपाही के विकास जनार्दन ने आज दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ी हमले के बाद के हालात की समीक्षा और आगे की रणनीति पर विचार के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट के साथ नितिन श्रीवास्तव।
सोमवार को 4 लोगों के गंभीर चेहरों वाली तस्वीर सब कुछ बयां कर रही थी। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बाएं हाथ बैठे राजनाथ सिंह की ओर गंभीरता से देख रहे थे। मोदी की बगल में वित्त मंत्री अरुण जेटली चुपचाप नीचे बिछी कालीन की ओर देख रहे हैं और इसी तस्वीर में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को कागज पर नोट्स लेते देखा जा सकता है। उड़ी में रविवार हुए हमले की गूंज भारत में साफ सुनाई दे रही है। 18 सैनिकों की मौत पर न सिर्फ सरकार और विपक्ष बल्कि आम लोगों और सोशल मीडिया पर खास तौर से गुस्से की लहर देखी जा सकती है। विदेशों से भी इस हमले की निंदा और मौतों पर अफसोस लगातार आना जारी है। श्रीनगर में सुबह उन 17 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई जिनकी मौत रविवार को हो गई थी। इसके बाद उनके शव उनके घरों के लिए रवाना कर दिए गए। इधर दिल्ली में एनडीए सरकार में वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद के तेवर तीखे भी थे और दो टूक। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियां अब सहनशीलता की सीमा पार कर चुकी हैं और भारत पाक संबंध अब कभी भी पहले की तरह नहीं रह सकेंगे। हालांकि रविशंकर प्रसाद के इस कड़े बयान के बाद राज्य मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने एबीपी न्यूज चैनल से काफी सहनशीलता से बात की। पूर्व जनरल वीके सिंह,
आज चीज यूं ही है, रोष है, हमको भावनाओं में नहीं बहना है। और दूसरा पहलू है कि हर चीज को सोच विचार के ठंडे दिमाग से एक रणनीति के तहत काम करना है।
दूसरी तरफ जहां विपक्षी दल लगभग एक स्वर में उड़ी में हुए हमले की निंदा कर रहे हैं, उनमें से कुछ ने भाजपा सरकार को निशाना बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान विदेश नीति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। सुरजेवाला ने मोदी को अपने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ बड़ी चूक हो जाने के चलते कार्रवाई करने के लिए भी ललकारा है। दिल्ली में जहां सरकार के शीर्ष मंत्रियों, फौजी जनरलों और सचिवों की बैठकें चलती रहीं, वहीं देर शाम इस बात की भी खबरें आईं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम उड़ी पहुंच चुकी है जो फौजी कैंप में चरमपंथी हमलों से जुड़े सबूत इकट्ठा करेगी। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
आज बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ी हमले के सिलसिले में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की है। उधर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए के अफसरों ने आज उड़ी जाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर सीमावर्ती क्षेत्र में चौकसी के बावजूद श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच चलने वाली बस सेवा आज जारी रही। इस बीच घाटी में बंद और कर्फ्यू के कारण आज भी जनजीवन ठप रहा। सुनिए श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या एनएआई के अफसरों ने आज उड़ी में इस स्थान का दौरा किया जहां सेना के 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर चरमपंथियों ने हमला किया था। आज एक घायल सैनिक की मौत के साथ मरने वाले सैनिकों की संख्या 18 हो गई है, जबकि मुठभेड़ के दौरान 4 चरमपंथियों को भी मार गिराया गया था। मारे गए सैनिकों के शव आज श्रीनगर में स्थित सेना की 15वीं कोर के हेडक्वार्टर पहुंचाए गए, जहां सैनिक अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सैन्य अस्पताल में भर्ती घायल सैनिकों से भी बातचीत की। भारत का पक्ष करने वाले राजनीतिक वर्गों ने उड़ी हमले पर भारत की भावुक प्रतिक्रिया की आलोचना की है। विधायक इंजीनियर रशीद का कहना है कि युद्ध की बातें करने के बजाय सेना से जवाब लेना होगा कि सीमा पर इस तरह की घटना कैसे घटी।
हमारा ये मानना है कि ये सारा कुछ हिंदुस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाने के लिए कर रही है, जो कश्मीर के अंदर एक बिल्कुल पुरअमन और बिल्कुल दाखिली और खालिस मकानी तहरीक है, अस्करी सतह पे और सियासी सतह पे, उससे आलमी बरादरी की तवज्जो हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है।
इस बीच उड़ी कस्बे में कर्फ्यू और सीमा पर कड़ी चौकसी के बावजूद कारवाने अमन बस श्रीनगर से मुजफ्फराबाद के लिए रवाना हुई। नियंत्रण रेखा के आर पार ये बस सर्विस भारत और पाकिस्तान ने 10 वर्ष पहले शांति प्रयासों के अंतर्गत शुरू की थी। इस बस सर्विस का मकसद कश्मीर के दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक रिश्तों को बहाल करना है। बस में सवार यात्रियों ने कहा कि वो सीमा पर शांति चाहते हैं।
हालात आजकल थोड़े खराब है, वरना मजीद 15 दिन और रुकते। ऐसे मामलात से फिर ये जो अमन का सिलसिला जारी है, ये इसके रुकने का अमकान है, नहीं होना चाहिए ऐसा, चाहे उधर हो या इधर हो।
इस बीच आज भी कश्मीर में बंद रहा, जबकि भारत विरोधी मार्चेस को रोकने के लिए ज्यादातर इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। दक्षिणी कश्मीर के शोपियान जिला और उत्तरी कस्बा सोपोर में कर्फ्यू के बावजूद लोगों ने भारत विरोधी मार्च करने का प्रयास किया, जिसके बाद फोर्सेस ने आंसू गैस के शेल और पैलेट्स फायर किए। इन कार्रवाईयों में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। गौरतलब है कश्मीर में चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी की मृत्यु से छिड़ा आंदोलन अब तीसरे महीने में चल रहा है और शांति बहाली के लिए भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रभावशाली नीति की तलाश में है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
इस बीच उड़ी में हमले का शिकार हुए सैनिकों के शव उनके घरों में पहुंच रहे हैं। सैनिकों के घरों और इलाके में मातम का माहौल है। इस चरमपंथी हमले में महाराष्ट्र के जाशा गांव के चंद्रकांत की भी मौत हो गई थी। हमारे सहयोगी संजय तिवारी जाशा पहुंचे और वहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है।
महाराष्ट्र में सातारा शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर छोटा सा गाँव है जाशी। आबादी होगी करीब 1,250। यह गांव आज लगभग बंद है, न कोई खेत पर गया है और न किसी ने दुकान खोली है। गांव के बाहरी हिस्से में एक घर के करीब बड़ी सी भीड़ इकट्ठा है। हर कोई शोक में है, मानो अपने परिवार के किसी सदस्य की मौत हो गई हो। यह घर गलांडे परिवार का है जिसके 3 बेटे भारतीय सेना में सेवारत हैं। रविवार को उरी में हुए हमले में इनमें से एक 27 साल के चंद्रकांत की मौत हो गई। चंद्रकांत की पत्नी और माँ का रो रो कर बुरा हाल है और उनके 2 छोटे बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि घर में यह क्या हुआ है। इनमें छोटी बेटी 2 साल की हैं। परिवार के साथ ही गांव के लोगों से भी बात करने पर वे इस हमले को कायराना बताते हैं और अपना गुस्सा जताते हैं। उनका कहना है कि गांव ने एक चंद्रकांत खोया है लेकिन देश में अब भी हजारों लाखों चंद्रकांत मौजूद हैं। चंद्रकांत के एक दोस्त शंकर खाड़े ने बताया,
जो उरी में रात्रि का हल्ला हुआ उसमें शहीद हुए जाशी गांव के चंद्रकांत गलंडे, जो इस गांव में स्कूल नहीं था इसलिए वो बाजू में जो गांव है पलसी गांव 4 किलोमीटर आने जाके स्कूल में वो पढ़ाई की उसने।
चंद्रकांत के एक दूसरे दोस्त अर्जुन कदम बताते हैं,
आतंकी जो हल्ला हुआ है ना इसका हम गांव से निषेध करता हूँ और ये सरकार ने कुछ तो करना चाहिए, कब तक हमला हमारे देश पर करेंगे, कुछ तो जरूर करना है। गांव में अभी दुख का सावट है, इसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, हम दुखी है, कुछ तो जरूर करना चाहिए, सरकार ने दखल देनी चाहिए।
पूरा जाशा गांव गहरे शोक में है लेकिन उरी में हुए हमले के खिलाफ वहां गुस्सा भी साफ साफ तैरता दिखाई दे रहा है। जाशा गांव से बीबीसी हिंदी के लिए संजय रमाकांत तिवारी।
उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया है। सम्मेलन से पहले पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवानों ने कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई में नई जान डाल दी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद होना चाहिए। एक रिपोर्ट के साथ न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
इतवार के रोज न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी मूल के लोगों से बात करते हुए ये दोहराया कि पाकिस्तान हर सतह पर कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के हक की हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस को खत लिखकर भारतीय कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में आगाह किया है और वहां जारी खुरेजी रोके जाने की मांग भी की है। नवाज शरीफ ने खत में यह भी मांग की है कि कश्मीर से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर अमल किया जाए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन खतों में यह भी कहा गया है कि भारतीय कश्मीर में खराब हालात के कारण इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को खतरा पैदा हो रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बुध के दिन यूएन जनरल असेंबली के 71वें सम्मेलन में भाषण भी देंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक नवाज शरीफ अपने भाषण में भारतीय कश्मीर में कथित तौर पर जारी मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में दुनिया की तवज्जो के लिए पॉलिसी बयान देंगे। सन 2013 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से मियां नवाज शरीफ का संयुक्त राष्ट्र में 4th भाषण होगा, लेकिन भारत की ओर से भी नवाज शरीफ के भाषण के जवाब में बयान देने की पूरी तैयारी की जा रही है। आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से भी मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ आज ही ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे से भी मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के दौरान नवाज शरीफ न्यूयॉर्क में तुर्की, ईरान और चीन और सऊदी अरब के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र के छोटे शहरों, कस्बों, जिलों और तालुका मुख्यालयों में लाखों लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल रहे हैं। अभी तक इस पर मीडिया का बहुत ध्यान नहीं गया है। आज लातूर, अकोला और कई अन्य जिलों में भी इसी तरह संयमित और अनुशासनबद्ध लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। रिपोर्टों के मुताबिक सिर्फ अकोला जिले में ही प्रदर्शनकारियों की करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार थी। विदर्भ में एक प्रदर्शनकारी ने अपनी बात इन शब्दों में रखी।
कोपरडी में जो प्रकरण हुआ है वो बहुत ही खराब हुआ है। सबको बहन होती है, सबको माँ भी होती है और सबके घर में बच्चियाँ भी होती है। अगर उनके घर में कोई बच्ची होंगी तो उनको ऐसे किया क्या? मांग हमारी ये है कि मराठा को आरक्षण मिलना ही चाहिए। जिस मराठा ने महाराष्ट्र में राज किया, दिल्ली में राज किया और भगवा पूरा देश में घुमाया, उसको आज आरक्षण नहीं है, बेरोजगार है। खुद मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, आरक्षण नहीं है, हम क्या करेंगे? आरक्षण चाहिए मराठा को।
कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर मराठा समुदाय के लोग हैं। आखिर इतनी भारी संख्या में देहाती इलाकों में क्यों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये सवाल हमारे सहयोगी राजेश जोशी ने पूछा मुंबई में वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स से।
महीने डेढ़ महीने से ये सिलसिला चल रहा है और मराठा समाज के लोग लाखों की तादाद में हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस में अपने मोर्चे निकाल रहे हैं। दरअसल बात ये हुई कि कुछ महीने पहले अहमदनगर जिले में कोपरडी नाम के गांव में एक मराठा लड़की पर अत्याचार हुआ था और अत्याचार करने वाले लड़के दलित थे, लेकिन इस अत्याचार की वजह से ये मोर्चे निकल रहे हैं, ऐसा एक चित्र सामने आ रहा है। लेकिन दरअसल बात वो नहीं है, इसकी शुरुआत औरंगाबाद से हुई। औरंगाबाद के बाद उस्मानाबाद, उस्मानाबाद के बाद जलगांव, जलगांव के बाद में काफी जगह पर ये मोर्चे निकाले गए।
ये जो आप कह रहे हैं कि मोर्चे निकाले गए यानी जुलूस और प्रदर्शन हुए हैं, इनकी खासियत क्या है, क्या मांग कर रहे हैं ये लोग?
देखिए, इनकी एक चार्टर ऑफ डिमांड है जिसमें एक तो कोपरडी के बारे में उनका कहना है कि न्याय मिलना चाहिए, उसमें तीन एक्यूज्ड है, उसमें से एक को पकड़ा गया, बाकी लोगों को पकड़ा जाए। दूसरी डिमांड है कि आरक्षण दिया जाए मराठा कम्युनिटी को, जो कई दिनों से, कई सालों से ये डिमांड आती रही है। तीसरा सबसे अहम मुद्दा इसमें से निकल कर आया है और जिसके कारण ऐसे लग रहा है कि दलित वर्सेस मराठा ये एक संघर्ष महाराष्ट्र में हो सकता है, ऐसा कई लोगों का कहना है, हालांकि परिस्थिति वैसी नहीं है। और वो तीसरी डिमांड है कि एट्रोसिटी का जो कानून है उसमें कुछ बदलाव हो जाए। वो सेंटर का कानून है लेकिन उसमें जो ओरल अब्यूज का जो एक सेक्शन है जिसमें कि अगर आप किसी को जाति के आधार पर गाली गलौज करते हो तो उसके लिए जो आपको अरेस्ट हो सकती है, आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है, उसका बहुत बड़े पैमाने पर जो है दुरुपयोग हो रहा है।
लेकिन इस वक्त अचानक ये मराठाओं का जो आंदोलन शुरू हो गया है, जो मीडिया में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, जो आप कह रहे हैं कि लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर रहे हैं गाँव तालुकों में, अब ये क्यों हो रहा है?
इसका कारण ही वो है क्योंकि मराठों के हाथ में सत्ता रही, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरे समाज के हाथ में सत्ता रही। मराठों के केवल कुछ खानदान है, 100-125 खानदान, इनके हाथ में सत्ता रही। और मराठा समाज में आप देखोगे अगर वो 30% है, 30% है पूरी लोकसंख्या के महाराष्ट्र के, ऐसा कहा जाता है, तो 4-1 करोड़ अगर लोग है उनमें से 90-95% लोग जो है वो मार्जिनल फार्मर या तो फिर लैंडलेस लेबरर्स है, वो नॉन इरिगेटेड लैंड पे खेती करते हैं और उनका जो रोज का जीना है वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही गरीबी का सामना उन्हें करना पड़ता है।
तो आप क्या ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये दरअसल किसानों का यानी खेती पर जो निर्भर लोग हैं उनका आंदोलन है?
एकदम सटीक कहा आपने। इसका कारण ये है कि जितने किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में हुई है अगर उनकी आप जाति देखेंगे तो उसमें 90% मराठा दिखते हैं, लेकिन जब वो आत्महत्या करते हैं तब ये कोई नहीं कहता है कि मराठों ने आत्महत्या की है, तब लोग ये कहते हैं कि ये आत्महत्याएं जो है ये किसानों ने की है। लेकिन दरअसल वो आत्महत्याएं जो है उसमें 90% मराठा किसान होते हैं और उस वक्त जो है यहाँ के सत्ताधारी, वो चाहे मराठा समाज के हो या चाहे और किसी समाज के हो, उनके सवालों की तरफ देखते नहीं है, उनके एजुकेशन के सवाल है। चूंकि वो ओपन कैटेगरी में आते हैं तो उनको शिक्षा नहीं मिलती है, नौकरियां नहीं मिलती है। महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेसी में देखोगे तो अगर आप ऊपर का क्रीम देखोगे IAS IPS तो उसमें मराठा बहुत ही आपको नेग्लिजिबल दिखेगा। जुडिशरी में आप देखोगे तो उसमें मराठा आपको बहुत ही नेग्लिजिबल दिखेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप देखोगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल दिखेगा।
इसका राजनीतिक असर क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है, बीजेपी की सरकार के लिए कितनी अच्छी या कितनी बुरी खबर है ये?
राजनीतिक असर इसका जरूर होगा बीजेपी के लिए, ये कोई कुछ भी कहे लेकिन बुरी ही खबर है। इसका सीधा कारण यह है कि बीजेपी का जो मुख्यमंत्री यहाँ पर बना है वो मराठा समाज का नहीं है, वो ब्राह्मण समाज का है। ब्राह्मण समाज यहाँ पर 3-3.5% है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो एस्टेब्लिश मराठा पार्टीज है, जैसे कि NCP हो, जैसे कि कांग्रेस पार्टी हो, इनके एस्टेब्लिश मराठा लीडरशिप भी इससे काफी घबराई हुई है, क्योंकि ये जो पूरा गरीब मराठा उठ रहा है और सड़कों पर आ रहा है लाखों की तादाद में बिना कोई घोषणा दिए।
ये जो बिना कोई लीडरशिप आप कह रहे हैं, तो इनका कोई नेतृत्व नहीं है, कोई संगठन नहीं है?
सामने इसका कोई चेहरा नहीं होता है, सामने 5 या 10 जो विद्यार्थिनी रहती है, जो लड़कियां रहती है स्कूल कॉलेजों की, वो जाके कलेक्टर को अपना निवेदन देती है, चार्टर ऑफ डिमांड देती है, उनके पीछे युवतियां रहती है, उनके पीछे विद्यार्थी रहते हैं, उनके पीछे युवक होते हैं, उनके पीछे पूरा समाज होता है, उनके पीछे सारे पार्टीज के नेता होते हैं, उनके पीछे सफाई ब्रिगेड होती है। तो पूरे मोर्चा में अगर कोई कचरा डालता है, बॉटल डालता है या प्लास्टिक डालता है, तो वो उठा के रास्ता साफ करते हुए जाते हैं, और ऐसी लाखों की तादाद में वो शहर का जो सबसे बड़ा चौक होता है वहां पर वो जमा होते हैं। जैसे कि कल नांदेड़ में हुए, वहां पर 7-8 लाख लोग जमा हुए, आज जो है लातूर में हुए, 21 तारीख को सोलापुर में होने वाले है, उसके बाद पुणे में होने वाले है, उसके बाद सातारा में होने वाले, उसके बाद कोल्हापुर में होने वाले, ये पूरा दौर 15 अक्टूबर तक चलेगा ऐसा उनका कहना है। ये बेसिकली मुझे ऐसे लग रहा है कि जो एग्रेरियन क्राइसिस हिंदुस्तान में पनप रहा है और किसानों के सवाल जो बहुत उग्र हो रहे हैं, अभी प्याज के जो भाव है 1 रुपया किलो से बिकने लगा मंडी में प्याज, टमाटर के भाव बहुत नीचे गए हैं, सारी सब्जियों के या बाकी जो चीजें हैं गेहूं या चावल, इनके इनको भाव नहीं मिल रहा है। दूसरी जगह पर आप शहर में जाओगे तो सारी चीजों के या शिक्षा के भाव बढ़ रहे हैं, हेल्थ के भाव बढ़ रहे हैं, उनकी दो अहम डिमांड्स भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा का सार्वत्रिकरण और सरकारीकरण किया जाए और हेल्थ का सार्वत्रिकरण और सरकारीकरण किया जाए। लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी जिसने भी की है, इसका चेहरा सामने नहीं आ रहा है कि ये कौन करवा रहा है।
ये थे मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स। गुजरात में आरक्षण आंदोलन के बाद महाराष्ट्र में भी तेजी से उभर रहा है किसानों का आंदोलन, जिनमें बहुसंख्यक मराठा लोग शामिल हैं। इसके राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मधुबनी जिले के बसैठ में हुई एक बस दुर्घटना में कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन के मुताबिक घटना में हताहत हुए लोगों की संख्या बढ़ सकती है। ये बस दरभंगा से सीतामढ़ी जा रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं पटना अपने सहयोगी मनीष शांडिल के पास। मनीष, क्या ताजा जानकारी है, कैसे हुई ये दुर्घटना?
अमरेश, ये दुर्घटना आज करीब दोपहर 12:30 बजे की है। जैसा कि आपने बताया कि बस दरभंगा से सीतामढ़ी जा रही थी, तो जो मधुबनी जिले का बेनीपट्टी अनुमंडल है, सब डिवीजन है, उसमें एक बसैठ गांव है। इसी गांव से जब बस गुजर रही थी तो बस एक तालाब में गिर गई और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। घटना के बाद जो वहां जो माना जा रहा है कि जो खबरें आई कि जो जिला प्रशासन की टीम थी वो थोड़ी देर से पहुंची राहत और बचाव कार्य के लिए, तो थोड़ा हंगामा भी हुआ, जिसके बारे में आपदा प्रबंधन विभाग ने भी इस हंगामे की पुष्टि की थी। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने शोक जताया है और जो आपदा प्रबंधन कानून है उसके तहत विभाग ने जो भी मृतक के निकटतम परिजन हैं उनको 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है और राहत बचाव कार्य अभी जारी है। SDRF की 2 और NDRF की 1 टीम वहां राहत बचाव कार्य में लगी हुई है।
जी मनीष, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप श्रोताओं को हफ्ते भर इंतजार रहता है अपनी चिट्ठियां सुनने का। आपकी चिट्ठियों के साथ वंदना और निखिल।
आपकी राय।
सभी श्रोताओं को निखिल रंजन का नमस्कार। आज मेरे साथ हैं वंदना और हम पढ़ रहे हैं आपकी चिट्ठियां।
जी बिल्कुल, पोस्ट कार्ड भी हैं, ईमेल भी हैं आपके पास तो।
जी, और कुछ हाथ से लिखी चिट्ठियां भी हैं।
जी,
तो सबसे पहले मैं एक हाथ से लिखी चिट्ठी पढ़ रहा हूं जो विष्णु वर्मा ने भेजी है, काकोली फैजाबाद उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं कि दिनांक 9/9/2016 को सायंकालीन दिनभर के हिंदी प्रसारण में उत्तर कोरिया द्वारा उच्च शक्ति के परमाणु विस्फोट किए जाने को सुनकर मन अत्यंत क्षुब्ध हो चुका। परम घातक हथियारों की ये होड़ विश्व को पता नहीं किस ओर ले जाएगी। इन्होंने लिखा है, श्रीमान रेहान फजल बाबू, क्या इस प्रकरण पर विवेचना प्रस्तुत करेंगे? यदि हाँ तो यथाशीघ्र करें।
ये जाहिर है बड़ा घटनाक्रम था और इन्होंने अगर सुना होगा, कार्यक्रम लगातार सुनते होंगे, तो निखिल आपने ही कुछ महीने पहले उत्तर कोरिया पर दुनिया जहां प्रस्तुत किया।
जी बिल्कुल, और उसमें हमने ये भी बताया था कि उत्तर कोरिया के पास किस तरह के मिसाइल और हथियार मौजूद हैं और वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अगला पत्र जो है वो पोस्ट कार्ड है और इसे भेजा है अशोक कुमार ठाकुर, माली टोल अदलपुर दरभंगा बिहार से। ये लिखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से रेडियो के प्रति श्रोताओं का झुकाव बढ़ा है। जब से प्रधानमंत्री की मन की बात रेडियो पर आना शुरू हुआ, तभी से रेडियो के प्रति अब युवाओं का झुकाव बढ़ता ही जा रहा है। रेडियो पत्रकारिता का इतिहास से संबंधित एक कार्यक्रम बनाएं।
जी, अभी कुछ दिन पहले जो रेडियो की हस्तियां हैं उनसे जुड़े कार्यक्रम तो देते रहे हैं। रेहान साहब ने ही विवेचना प्रस्तुत की थी देवकी नंदन पांडे, लेकिन सुझाव बिल्कुल वाजिब है कि रेडियो के इतिहास पे अगर मौका लगेगा तो जरूर सुनवाएंगे।
मेरे पास कई ईमेल्स हैं और उसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ। जो ये ईमेल भेजा है सोनू राठौर ने, और इनकी ये शिकायत है कि इनको ये रेडियो का कार्यक्रम जो है वो साफ साफ सुनाई नहीं देता है। इन्होंने लिखा है कि मुझे अमरेश द्विवेदी की आवाज़ तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब रेडियो का रिसेप्शन ख़राब हो जाता है तो बड़ा दुख होता है।
नहीं, जाहिर सी बात है कि अगर सुनाई नहीं देता है तो परेशानी होना बिल्कुल वाजिब है। किस तरह की दिक्कत होती है ये अगर थोड़ा विस्तार से बता पाते तो हम शायद बात आगे पहुंचाते, और जहां तक बात रही अमरेश की तो ये बात हम उन तक जरूर पहुंचा देंगे।
इसी तरह से एहसान असगर हैं जो मलकापुर जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से लिखते हैं कि वो प्रोग्राम डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, और इसके लिए उन्होंने राजेश जोशी जी और राजेश प्रियदर्शी जी को इस बारे में चिट्ठी लिखी
जी। तो एहसान साहब, आपकी बात जो है वो राजेश जोशी और राजेश प्रियदर्शी दोनों तक पहुंचा देंगे कि क्या वजह है, क्या दिक्कत है जिस वजह से डाउनलोड ये नहीं कर पा रहे हैं।
इसके अलावा जो रेहान फजल ने रेखा पर विवेचना प्रस्तुत की थी उसकी तारीफ कई लोगों ने की है, और एक चिट्ठी जो है वो आई है गणेश प्रसाद हुजदर नेपाल से।
जी, ये ईमेल है या चिट्ठी है?
ये ईमेल है।
ईमेल
जी। और इसके अलावा सतघट्टा खगड़िया से राजा बाबू ने भी चिट्ठी लिखी है। इन दोनों को विवेचना बहुत अच्छी लगी और राजा बाबू चाहते हैं कि लता मंगेशकर पर एक विवेचना बनाई जाए। और इधर गणेश प्रसाद ने लिखा है जो रेहान फजल ने विवेचना बनाई थी उसमें चंचल हसमुख चुलबुल और खूबसूरत फिल्म अभिनेत्री के बारे में जानकर खुशी हुई।
लगता है फैन है रेखा के।
जी, इन्होंने लिखा है कि मैंने रेखा की कई फिल्में देखी जैसे खून भरी मांग, सौतन की बेटी, बीबी हो तो ऐसी, परंतु उनकी चुलबुल धर्म कर्म में देखने को मिले।
जी, जाहिर है रेखा के फैंस हैं। पहले तो तमाम हमारे सुनने वालों को शुक्रिया, और नेपाल से भी लिखी है जो कि हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार सुनते हैं नेपाल से। तो रेहान साहब काफी मेहनत से हर बार एक नए विषय पर लेके आते हैं, इस बार की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
एक और हमारे श्रोता है घघरी जिला मुजफ्फरपुर से, ये लिखते हैं,
ये पिछली बार भी इन्होंने लिखी थी।
अच्छा, तो इनकी शिकायत सीधे सीधे वंदना जी से है। चलिए आज वंदना जी जवाब दे रही हैं।
सर माथे पर।
कहते हैं कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा बन जाता है। अमूमन वो गलतियां करती नहीं, पर पिछली बार जब मैंने पत्र लिखा था तो मैंने लिखा था कि इससे पहले जो इंडिया बोल कार्यक्रम हुआ था जो आम आदमी पार्टी पर था, उस कार्यक्रम को फेसबुक पर शामिल नहीं किया गया और ना ही लोगों की टिप्पणियां वहां से ली गई। ये जाहिर सी बात है कि शिकायत कर रहे हैं कि इंडिया बोल में अक्सर हम लोग टेलीफोन करने वाले श्रोताओं से ही ज्यादा बात कर पाते हैं और कई बार उस आपाधापी में छूट जाते हैं, फेसबुक के टिप्पणियां होती हैं।
जी, और इन्होंने शायद ये भी लिखा है कि मेरे ही सर पे ठप्पा लगा के इन्होंने एक तरह से शोर मचा दिया, तो ऐसी कोई बिल्कुल मंशा नहीं थी आपके बहाने से। चूंकि ऐसी शिकायत और भी कुछ लोगों ने की कि फेसबुक की टिप्पणियां शामिल नहीं हो पाती हैं, तो ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अगली बार ऐसा कोशिश करेंगे कि फेसबुक की टिप्पणियां भी कार्यक्रम में शामिल रहें। तो ये थे अभिषेक गौरव साहब, उम्मीद है कि अब इनकी शिकायत दूर हो गई होगी।
तो अब समय बचा नहीं है और चिट्ठियों के लिए, तो पता बता देते हैं जल्दी से।
बिल्कुल, जो लोग चिट्ठी भेजना चाहें उनके लिए पता है, आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और जो लोग ईमेल भेजना चाहें उनके लिए पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
चिट्ठियां इसी तरह भेजते रहिएगा। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी सेक्टर में चरमपंथी हमले के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। बैठक के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके आवास पर हालात की जानकारी दी। बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रह्मदाग मुफ्ती ने आज जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे भारत में राजनीतिक शरण लेने के बारे में सोच रहे हैं और जल्दी ही इसके लिए आवेदन करेंगे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने सीरियाई सेना पर अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमलों की निंदा की है और इसे खुला आक्रमण बताया है। अमेरिका के न्यूजर्सी में अधिकारियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन के पास कूड़ेदान से बरामद हुए एक संदिग्ध वस्तु में धमाका हो गया। इस बीच न्यूयॉर्क पुलिस ने न्यूयॉर्क में हुए धमाके के एक संदिग्ध 28 वर्षीय अहमद खान रहमानी की तस्वीर जारी की है। यूरोपीय संसद में दलाई लामा की उपस्थिति पर चीन ने एतराज जताया है। तिब्बत निर्वासित आध्यात्मिक नेता ने पिछले हफ्ते यूरोपीय संघ के नेताओं से कहा कि उन्हें तिब्बती समस्या के समाधान के लिए चीन को रचनात्मक आलोचना की पेशकश करनी चाहिए। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ दिनभर की यह सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद घटना चक्र में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अजित सारथी ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए पढ़ते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।